अध्याय संख्या 32, सहसंबंध गुणांक, को ऑफिशियंट ऑफ कोरिलेशन, COEFFICIENT, को ऑफिशियंट ऑफ, CORRELATION, को ऑफिशियंट ऑफ कोरिलेशन। पिछले अध्यायों में समूह की प्रकृति को किसी एक विशेषता के आधार पर केंद्रीय मान, स्थिति सूचक मान तथा विचरणशीलता गुणांक की सहायता से स्पष्ट करने की विधियों को प्रस्तुत किया गया है। कभी कभी किसी समूह के छात्रों के लिए दो चरों के साथ साथ घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति का ज्ञान भी वांछनीय होता है। जैसे साधारणतः कहा जाता है कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि व बुद्धिलब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। इसका अर्थ है कि अधिक बुद्धिमान छात्र परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करते हैं तथा कम बुद्धिमान छात्र परीक्षा में कम अंक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार आयु व ऊंचाई में भी संबंध होता है। दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया जाता है। सहसंबंध गुणांक बताता है कि एक चर के मान में परिवर्तन का दूसरे चर के मान पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। सहसंबंध गुणांक वह अनुपात है जो दो चरों के बीच सहसंबंध की सीमा व प्रकृति बताता है। सहसंबंध तीन प्रकार का हो सकता है, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध तथा शून्य सहसंबंध। जब एक चर के मान में वृद्धि होने पर दूसरे चर के मान में भी वृद्धि होती है तथा एक चर के मान में कमी होने पर दूसरे चर के मान में भी कमी होती है, तो दोनों चरों के बीच के सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। जब एक चर के मान में वृद्धि होने पर दूसरे चर के मान में कमी होती है तथा एक चर के मान में कमी होने पर दूसरे चर के मान में वृद्धि होती है, तो दोनों चरों के बीच के सहसंबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। जब एक चर के मान में वृद्धि होने पर दूसरे चर के मानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दोनों चरों के बीच सहसंबंध को शून्य सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध ये तीनों प्रकार एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो सकेंगे। माना कि 5 छात्रों के हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी व गणित परीक्षणों पर प्राप्तांक ज्ञात हैं। हिंदी और अंग्रेजी तथा हिंदी व गणित चरों के बीच सहसंबंध को निम्न ढंग से देख सकते हैं। तीरों के निशान चर के एक प्राप्तांक से दूसरे प्राप्तांक पर बदलने की प्रवृत्ति बता रहे हैं। हिंदी 10, इतिहास 9, हिंदी 8, इतिहास 8, हिंदी 7, इतिहास 6, हिंदी 4, इतिहास 5, हिंदी 3, इतिहास 2। हिंदी व अंग्रेजी, हिंदी 10, अंग्रेजी 1, हिंदी 8, अंग्रेजी 2, हिंदी 7, अंग्रेजी 4, हिंदी 4, अंग्रेजी 5, हिंदी 3, अंग्रेजी 7। हिंदी व गणित, हिंदी 10, गणित 6, हिंदी 8, गणित 4, हिंदी 7, गणित 9, हिंदी 4, गणित 1, हिंदी 3, गणित 5। स्थिति 1 में धनात्मक सहसंबंध है, स्थिति 2 में ऋणात्मक सहसंबंध व स्थिति 3 में शून्य सहसंबंध है। स्थिति 1 से स्पष्ट है कि जिस छात्र के हिंदी में सर्वाधिक अंक हैं, उसके इतिहास में भी सर्वाधिक अंक हैं। जिस छात्र के हिंदी में प्राप्तांक दूसरे क्रम पर हैं, उसके इतिहास में प्राप्तांक भी दूसरे क्रम पर हैं। यह बात सभी छात्रों के लिए है। अतः यदि छात्रों के हिंदी में अंक घट रहे हैं तो इतिहास में भी घट रहे हैं, तथा यदि हिंदी में अंक बढ़ रहे हैं तो इतिहास में भी बढ़ रहे हैं। अतः हिंदी व इतिहास चरों के बीच धनात्मक सहसंबंध होगा। स्थिति 2 से स्पष्ट है कि छात्र के हिंदी में सर्वाधिक अंक हैं, उसके अंग्रेजी में सबसे कम अंक हैं। छात्रों का क्रम दोनों विषयों में एक दूसरे के विपरीत है। यदि हिंदी में अंक बढ़ते हैं तो अंग्रेजी में घट रहे हैं, तथा यदि हिंदी में घटते हैं तो अंग्रेजी में बढ़ते हैं। अतः हिंदी व अंग्रेजी चरों के बीच ऋणात्मक सहसंबंध होगा। स्थिति 3 से स्पष्ट है कि हिंदी में अंक बढ़ने पर कुछ छात्रों के गणित में अंक बढ़ते हैं तथा कुछ छात्रों के गणित में अंक घटते हैं। अतः हिंदी व गणित चरों में शून्य सहसंबंध होगा। परंतु व्यवहार में दो चरों के बीच का सहसंबंध ज्ञात करना इतना सरल कार्य नहीं है। एक तो छात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, दूसरे सभी प्राप्तांकों के घटने या बढ़ने का क्रम स्पष्ट नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में सहसंबंध छात्रों के लिए दोनों चरों के साथ साथ घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति से प्रकट होता है। यदि सभी छात्रों की वजह से दोनों चरों के साथ साथ घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति होती है तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहा जाएगा। यदि अधिकांश छात्रों की वजह से दोनों चरों के साथ साथ घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति होती है तो उच्च धनात्मक सहसंबंध कहा जाएगा। इसी प्रकार से कुछ छात्रों, कम छात्रों व बहुत कम छात्रों की वजह से दोनों चरों में साथ साथ घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति होती है तो क्रमशः परिमित, निम्न व अत्यंत निम्न धनात्मक सहसंबंध कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि सभी छात्रों, अधिकांश छात्रों, कुछ छात्रों, कम छात्रों व बहुत कम छात्रों की वजह से एक चर के घटने पर दूसरे चर के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है तो क्रमशः पूर्ण ऋणात्मक, उच्च ऋणात्मक, परिमित ऋणात्मक, निम्न ऋणात्मक व अत्यंत निम्न ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। किंतु यदि दोनों चरों के साथ साथ बढ़ने या घटने या एक के घटने पर दूसरे के बढ़ने की प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं हो पाती है तो शून्य सहसंबंध कहा जाएगा। सहसंबंध की सीमा व प्रकार को जानने के लिए सहसंबंध गुणांक की गणना की जाती है। सहसंबंध गुणांक एक अनुपातिक संख्या होती है जिसका मान -1 से लेकर +1 के बीच होता है। सहसंबंध गुणांक का चिन्ह सहसंबंध के प्रकार को तथा परिमाण सहसंबंध की मात्रा को व्यक्त करता है। सहसंबंध गुणांक जितना अधिक होता है दोनों चरों के बीच सहसंबंध उतना ही अधिक पुष्ट होता है। सहसंबंध गुणांक के मानों के आधार पर इसकी व्याख्या निम्नानुसार की जा रही है। सहसंबंध गुणांक का मान +1 पूर्ण धनात्मक, +0.90 से 1 तक अत्यंत उच्च धनात्मक, +0.70 से 0.90 तक उच्च धनात्मक, +0.40 से +0.70 तक परिमित धनात्मक, +0.20 से +0.40 तक निम्न धनात्मक, 0 से 0.20 तक अत्यंत निम्न धनात्मक, शून्य में शून्य, 0.00 से 0.20 तक अत्यंत निम्न ऋणात्मक, -0.20 से -0.40 तक निम्न ऋणात्मक, -0.40 से -0.70 तक परिमित ऋणात्मक, -0.70 से -0.90 तक उच्च ऋणात्मक, -0.90 से -1 तक अत्यंत उच्च ऋणात्मक, -1 से पूर्ण ऋणात्मक। वैसे तो दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की अनेक विधियां उपलब्ध हैं, किंतु उनमें से केवल दो विधियां श्रेणी क्रम सहसंबंध विधि तथा गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध विधि अत्यधिक प्रचलित है। यहाँ यह बात ध्यान रखने की बात है, विभिन्न विधियों से प्राप्त सहसंबंध गुणांक का मान भिन्न भिन्न हो सकता है। श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक, रैंक ऑर्डर कोर रिलेशन कोफिशियंट। श्रेणी क्रम विधि से सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधि का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था, जिनके नाम पर इस विधि का को स्पीयरमैन गुणांक विधि तथा इससे प्राप्त सहसंबंध गुणांक को स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक या स्पीयरमैन श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं। इस विधि से प्राप्त सहसंबंध गुणांक को लैटिन भाषा के अक्षर जिसे रो कहते हैं से लिखते हैं। इस विधि में दोनों चरों के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार अलग अलग क्रमबद्ध किया जाता है। सबसे बड़े प्राप्तांक को एक, इससे छोटे प्राप्तांक को दो तथा इसी प्रकार सभी प्राप्तांकों को 3, 4, 5 आदि क्रम में देते हैं। इस प्रकार से सबसे छोटा प्राप्तांक ठीक वही क्रम प्राप्त करता है जितने की कुल छात्र अर्थात कैपिटल एन हैं। दोनों चरों के प्राप्तांकों को अलग अलग क्रम देने के उपरांत विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त दो क्रमों के अंतर के वर्ग का योग प्राप्त कर लेते हैं। साधारणतः एक चर को x से तथा दूसरे चर को y से व्यक्त करते हैं। x चर के प्राप्तांकों के क्रम को R1 तथा y चर के प्राप्तांकों के क्रम को R2 से तथा दोनों चरों पर प्राप्त क्रमों के अंतर को D संकेताक्षर से प्रदर्शित करते हैं। D का मान ज्ञात करते समय प्लस या माइनस का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। सिग्मा डी स्क्वायर का मान प्राप्त कर लेने के बाद निम्न सूत्र की सहायता से सहसंबंध गुणांक का मान ज्ञात कर लेते हैं। सहसंबंध गुणांक रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट बंद, जहां सिग्मा डी स्क्वायर बराबर क्रमों के अंतरों के वर्गों का योग, एन बराबर कुल छात्रों की संख्या। उदाहरण 10 छात्रों के संस्कृत तथा अंग्रेजी परीक्षणों पर प्राप्त की गई सारणी के अनुसार थे। संस्कृत तथा अंग्रेजी प्राप्तांकों के बीच श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना करो। छात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संस्कृत 10 13 15 14 16 20 9 8 12 11 अंग्रेजी 12 11 19 17 9 16 10 14 13 15 हल। श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना करने के लिए सारणी बनाने पर x 10 13 15 14 16 20 9 8 12 11 y 12 11 19 17 9 16 10 14 13 15 Rx 8 5 3 4 2 1 9 10 6 7 Ry 7 8 1 2 10 3 9 5 6 4 D बराबर R1 - R2 1 3 2 2 8 2 0 5 0 3 D स्क्वायर 1 9 4 4 64 4 0 25 0 9 श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक रो बराबर 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सारणी से सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 120, एन बराबर 10 सूत्र में मान रखने पर रो बराबर 1 - 6 इंटू 120 बटे 10 गुणे 10 गुणे 10 माइनस 1 बराबर 0.27। अतः श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक रो बराबर 0.27। प्राप्त रो बराबर 0.27 की व्याख्या। संस्कृत व अंग्रेजी प्राप्तांकों के बीच श्रेणी क्रम सहसंबंध का मान 0.27 है। स्पष्ट है कि सहसंबंध धनात्मक है, परंतु मान कम होने के कारण इस संबंध को निम्न कोटि का धनात्मक संबंध कहा जाएगा। कहा जा सकता है कि संस्कृत व अंग्रेजी में प्राप्तांकों के साथ साथ बढ़ने की प्रवृत्ति तो है, किंतु यह प्रवृत्ति कुछ ही छात्रों में है। यह कह सकते हैं कि छात्रों की संख्या योग्यता के साथ अंग्रेजी योग्यता के बढ़ने की कुछ प्रवृत्ति भी है। समान प्राप्तांक टाइड स्कोर्स। श्रेणीक्रम विधि से सहसंबंध ज्ञात करते समय कभी कभी किसी एक चर या दोनों चरों के कुछ प्राप्तांकों का मान एक समान होता है। ऐसी स्थिति में प्राप्तांकों को क्रम देते समय परेशानी होती है। तब पहले सभी प्राप्तांकों को आकार के अनुसार व्यवस्थित करके क्रम दे देते हैं। अब समान प्राप्तांकों द्वारा प्राप्त भिन्न क्रमों का औसत ज्ञात कर लेते हैं तथा सहसंबंध गुणांक के लिए क्रम देते समय उन सभी समान प्राप्तांकों को यह औसत देते हैं। यदि एक्स चर तथा 11 छात्रों के प्राप्तांक क्रमशः 14 15 12 14 10 9 5 6 9 9 11 हों तो निम्नानुसार व्यवस्थित करके क्रम देंगे। 15 14 14 12 11 10 9 9 9 6 5 क्रम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 व्यवस्थित क्रम 1 14 को देंगे 2.5 फिर 14 को देंगे 2.5 क्रम फिर 12 को देंगे 4 11 को 5 10 को 6 9 को 8 9 को 8 फिर 9 को 8 6 को 10 5 को 11 अतः प्राप्तांक 15 को 1, प्रत्येक 14 को 2.5, 12 को 4, 11 को 5, 10 को 6, प्रत्येक 9 को 8, 6 को 10 तथा 5 को 11वां क्रम देंगे। इसी प्रकार से यदि दूसरे चर पर भी कुछ प्राप्तांकों का मान समान होता है तो प्राप्तांकों को आकार के अनुसार व्यवस्थित करके क्रम दे देते हैं तथा फिर समान प्राप्तांकों द्वारा प्राप्त क्रमों का औसत उनमें से प्रत्येक प्राप्तांक को दे देते हैं। उदाहरण, नीचे दी गई सारणी में दिए गए हिंदी व अगणित प्राप्तांकों के बीच श्रेणी क्रम से संबंध गुणांक ज्ञात करो, प्राप्त रो की व्याख्या भी करो। हल, श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक रो बराबर 1 - 6σd² / n, ब्रैकेट में n² - 1, ब्रैकेट बंद। सारणी बनाकर गणना कार्य करने पर हिंदी प्राप्तांक x 12, 14, 12, 17, 19, 12, 14, 13, 15, गणित प्राप्तांक y 15, 14, 10, 11, 9, 11, 16, 18, 12, आर एक्स 8, 4.5, 8, 2, 1, 8, 4.5, 6, 3, आर वाई 3, 4, 8, 6.5, 9, 6.5, 2, 1, 5, डी 5, 0.5, 0, 4.5, 8, 1.5, 2.5, 5, 2, डी स्क्वायर 22, 0.25, 0, 0.25, 64, 2.25, 6.25, 25, 4, एन बराबर 9, सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 147। सूत्र में मान रखने पर रो बराबर 1 - 6 × 147/9 × 9 - 1, अतः श्रेणी क्रम से संबंध गुणांक रो बराबर -0.23, प्राप्त रो बराबर 0.23 की व्याख्या। हिंदी तथा गणित प्राप्तांकों के बीच -0.23 का सहसंबंध है। स्पष्ट है कि यह सहसंबंध ऋणात्मक है, परंतु p बराबर 0.23 माइनस का प्राप्त होने के कारण इसे निम्न कोटि का ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाएगा। अतः कहा जा सकता है कि हिंदी व गणित प्राप्तांकों में एक दूसरे के विपरीत जाने की प्रवृत्ति है। दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे छात्रों को हिंदी योग्यता बढ़ती है वैसे वैसे गणित योग्यता घटती है, किंतु यह प्रवृत्ति बहुत अधिक नहीं है।